He's come because we are very naughty kids. And he's come because it's time. You know, it's just time. Recently, we've been hearing a lot about the Middle East situation, and all over the world, there's something happening. The children are internally in a state of anger. Internally, there is something going on in our souls. And if he doesn't come, it's just going to get worse. And why I know he has come is that I've seen in the community that I'm in the community of the Brahmakumaris, images and faces and people who have been in the dark night of their souls. And I've seen that there's been a huge shift where their faces, their features, their lifestyles are proving that light has come. And so when God comes, it'll be a very quiet intervention, and your mind has to become, at least for a moment in time, quiet, so you could connect and hear him and feel him for that change to happen in your life. So the proof is here. I'm seeing it. I'm seeing people changing in front of my own eyes, and it's not easy to change people. And so he has come now. Why? The proof are in the people that I see here. They have changed. And that's my proof that he's here.
Because there's a great need, and his time has come to purify all of us, purify the world. And the world is in a big, big mess today. And there is, in a way, it is in a little bit of a hopeless stage. And there is nobody else who can do anything about it but God. The human race has been trying with its with science and with all its means to find a way, but it is only God who can do what it takes. And he is doing it right now. And that is the good thing. So it's the greatest thing in mankind, in the history of mankind, what is happening at this moment. That he is really here and he is creating the new civilization.
There is such a need, and my personal experience was that I have been searching, and there has been so much transformation in my life, so many things that I feel I have attained, that there is no doubt in my mind that God has come.
Jyoti jagao, Jyoti jagao, Vishwa shanti ki Jyoti jagao.
Yes, I believe it, but I don't want to get lost in a formal belief. It's not a matter just of believing, it's a matter of understanding the knowledge that God brings for all humanity and for me personally, and to put that knowledge into practice, because if my state of being and behavior doesn't change, then many people say they believe God does this or God does that, God has come, God is channeling. But for me, I do believe actually he's working at this time, he has come. But then what am I doing? For me, this is very important, how I respond, because I feel that knowledge is never a privilege or a prerogative. I feel knowledge is a responsibility for personal action.
I know he has come, yeah, and I feel it. So yes, he's here. He's here with me. He's always been here, but then he's a bit closer nowadays.
Na koi Shiv ke purv tha, na koi Shiv ke baad hai.
Na koi Shiv ke purv tha, na koi Shiv ke baad hai.
Param Pita pavitratam ka prem hi prasad hai. Adhar pe Shiv ka naam hai, hriday mein Shiv ki yaad hai.
Adhar pe Shiv ka naam hai, hriday mein Shiv ki yaad hai.
Param Pita pavitratam ka prem hi prasad hai. Na koi Shiv ke purv tha, na koi Shiv ke baad.
हर मानव ईश्वर को बुला रहा है, परमात्मा को बुला रहा है। तो जब हम सभी उस भगवान को बुला रहे हैं तो जरूर ये उनके आने का समय है। सभी बहुत ध्यान से सुने, ये हमारा हमारी बहनों की बात नहीं है, ये उस परमेश्वर का मैसेज है। 1937 में वो परमपिता परमात्मा इस धरापृष्ठ पे आ गए हैं और आकर के मनुष्य मात्र को सत ज्ञान और सत्य परिचय दे रहे हैं, जिससे मानव मात्र अपने आप को शुद्ध पवित्र करके उस नई दुनिया में जाने की तैयारी करें। इन सब बातों का विचार वर्णन हमारे शास्त्रों में पहले से ही है और परमात्मा ने इस बार कहा कि बहुत स्पष्ट रीति से सबको बताओ कि कैसे भगवान अपना दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं, कहाँ आए हैं, कैसे आए हैं, मुझे इस समय में क्या करना है, उस सब के लिए सबको सोचने को एक मौका दिया जाए। भगवद गीता कहता, जब जब धर्म की ग्लानि होती उस समय परमात्मा आएंगे, आके क्या करेंगे, परित्राणा या साधुनाम विनशाय चतुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। जब आएंगे साधु संतों का उद्धार करने के लिए, तो वो साधु शब्द का अर्थ क्या है, जो आत्माएं साधुता पूर्ण आचरण करेंगे, अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे। इसलिए शास्त्रों में दिखाया है कि बहुत जो दुराचारी भी थे वो भी साधु हो गए, उन्होंने अपने जीवन में परिवर्तन कर लिया। इसका मतलब ये है कि इस घड़ी संधि मुहूर्त के समय पे हर एक व्यक्ति को परिवर्तित होना, शुद्धता लाना जीवन में, अच्छे होने का एक मौका भगवान देते हैं। बाइबल कहता कि खुद खुदा एक समय पे आते हैं जिसे कयामत का समय कहा गया है। उस कयामत के समय में हर व्यक्ति कब्र दाखिल होगा, कब्र दाखिल हो जाएगा, माना वो सोचते हैं कि कब्र में फंस जाएगा नहीं, देह अभिमान हो जाएगा, अपने आप को रूह जानना भूल जाएगा, ये नहीं उसको पता होगा कि मैं एक आत्मा हूँ, वो अपने आप को व्यक्ति विशेष मानेगा, इस संसार से अटैच होगा, माटी से अटैच होगा। तो उन सब आत्माओं को परमात्मा आएंगे कब्र दाखिल इंसान को उठाने के लिए, कब्र से माटी से बाहर निकाल करके अपने आप को रूह समझने के लिए। तो जब आत्मा अपने आप को समझेगी, रूह जब अपने आप को समझेगी, उस समय अल्लाह ताला उसे नेक शिक्षाएं देंगे, ठीक है। उन नेक शिक्षाओं को जो आत्मा धारण करेगी वो अल्लाह ताला के साथ वहिस्त को जाएगी, और जो अपने जीवन को परिवर्तन नहीं करेंगे उन्हें जन्नत नसीब होगा, जहन्नुम नसीब होगा। बाकी लोग भगवान के साथ जन्नत में जाएंगे, अल्लाह के साथ जन्नत में जाएंगे, और जो परिवर्तन नहीं करेंगे उन्हें जहन्नुम में जाना पड़ेगा। इस प्रकार की एक बात बाइबल में भी लिखा हुआ है, ये कुरान शरीफ की बात थी। बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि एक डे ऑफ फाइनल जजमेंट संसार में आता है, डे ऑफ फाइनल जजमेंट, उस समय गॉड को इस संसार में आना पड़ता है अपने बच्चों के पास। गॉड उस समय सभी को बुलाएंगे अपने पास कि हे मेरे बच्चों आओ, आकर के अपने आप को अच्छा बनाओ, शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ। ये शुद्ध पवित्र स्नान करने से या किसी और प्रकार की बाह्य शुद्धि से नहीं है, ये शुद्धि आत्मा की शुद्धि है। जब आप शुद्ध पवित्र बनेंगे तो मैं आपको बहिष्ट लेकर के जाऊंगा, हेवन लेकर के जाऊंगा, नहीं तो बाकी सब हेल में चले जाएंगे। तो उसका ये अर्थ है कि कली काल के इस अंतिम चरण पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन चल रहा है, पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन का समय। इस परिवर्तन के समय में संसार में क्या होगा, वो परमात्मा की प्रेरणा, परमात्मा के महावाक्य, परमात्मा का संदेश हर आत्मा तक पहुंचेगा। कुछ लोग दरवाजा बंद कर लेंगे, नहीं सुनेंगे, कुछ लोग थोड़ा सुनेंगे, बंद कर देंगे, कुछ लोग जीवन को परिवर्तन करेंगे, कुछ सोएंगे, उठेंगे, उठेंगे, सोएंगे, लेकिन लास्ट में जाग जाएंगे। अपने अपने चेतना के हिसाब से जो आत्मा जब जागेगी तब वो अपने जीवन में परिवर्तन लाएगी। तो भाइयों और बहनों, परमात्मा का ये मैसेज आप तक पहुंचाना है। सृष्टि ड्रामा का अब अंतिम घड़ी आ गया है, बहुत कम समय है। इस कम समय में, ये कम समय भी परमात्मा ने हमें इसलिए दिया है ताकि हम अपना परिवर्तन कर सकें। अब यहाँ वहाँ संसार में नहीं देखें, एक काम देखें, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे श्रेष्ठ बनना है।
शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता,
मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर गली हर फूल से वो प्यार करता।
शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है।
आज हिमालय की चोटी से खुल कर ये ऐलान करो, जागो ऐ जग वालों, भारत में आया भगवान। कहो
आज हिमालय की चोटी से खुल कर ये ऐलान करो, जागो ऐ जग वालों, भारत में आया भगवान। कहो
भाग्य बनाने की घड़ियां है, भाग्य बनाने की घड़ियां कहीं बीत न जाए सोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने। शिव पिता का झंडा तैर रहा है।
सबसे बड़ी खोज जो है मनुष्य जीवन में वो परमात्मा की है, कि परमात्मा, ईश्वर, प्रभु, गॉड, हम भिन्न भिन्न शब्दों से चाहते हुए न चाहते हुए ये शब्द जरूर पुकारते हैं, प्रार्थना करते हैं और सच्चे दिल से ऐसा चाहते हैं कि एक दिन ऐसा आए मेरे जीवन में कि मुझे परमात्मा से मैं मिल सकूं, कई कहते हैं दर्शन कर सकूं, मुझे उनकी कंपनी मिले, संग मिले और मुझे उनके द्वारा जो मेरा लक्ष्य है या जो मेरी डेस्टिनेशन है मुक्ति और जीवन मुक्ति वो प्राप्त हो। तो मैं भी इसी तरह से इस खोज और जिज्ञासा में थी और जब मुझे परमपिता परमात्मा का परिचय ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के एक सेवा केंद्र में दिल्ली में प्राप्त हुआ तो बहनों ने मुझे ये बताया कि हम सबके जो शिक्षक हैं, हम सबके जो पिता हैं, हम सबके सदगुरु हैं, वो परमपिता परमात्मा शिव हैं, निराकार हैं और हम सभी आत्माओं के वो न केवल पिता हैं परंतु साथ साथ सखा भी हैं, बंधु भी हैं। तो जब बहने ये परिचय देने लगी, ब्रह्मा कुमारी बहने, तो मुझे उनके परिचय देने से कुछ क्षणों के लिए तो ऐसा लगा कि उनका परमात्मा से बहुत समीप का कोई परिचय लगता है, क्योंकि वो इतने आश्वासन से वो बात कह रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि आप परमात्मा से मिल चुके हैं, परमात्मा को आप जानते हैं? तो उन्होंने कहा परमात्मा ही तो हमें ये सब ज्ञान दे रहे हैं। तो मेरी और जिज्ञासा बढ़ी। तो मैंने जब ईश्वरीय ज्ञान लेना शुरू किया तो ज्ञान सुनते सुनते विशेषकर ये जो संदेश कि तुम सभी आत्माएं हो, अर्थात हम सभी आत्माएं हैं, जब ये समझ मिली तो ये कौन कह सकता है कि बच्चे तुम आत्मा हो, तुम सभी आत्माएं हो और मेरे बच्चे हो, जरूर हमारे पिता ही कह सकते हैं। तो किस तरह से परमात्मा ये शिक्षा देते हैं, ये और जिज्ञासा बड़ी जानने के लिए। तो उसके बाद पता लगा कि आज वर्तमान समय पर जो कलयुग का अंत और सत्युग की आरंभ है, तो सत्युग के आदि और कलयुग के अंत के समय को हम संगम युग कहते हैं, क्योंकि एक ट्रांजिशन का टाइम है यहाँ पर। तो इस ट्रांजिशन टाइम में, क्योंकि ऊपर ले जाना है, चढ़ती कला में ले जाना है, तो सिर्फ परमात्मा ही कर सकते हैं। तो परमात्मा निराकार है, अब निराकार परमात्मा से कैसे शिक्षा मिले? तो निराकार परमात्मा ने एक माध्यम, जो एक साधारण व्यापारी थे दादा लेखराज, तो 60 वर्ष की आयु में, आज से 75 वर्ष पहले, परमपिता परमात्मा ने पहले उनको कुछ दिव्य साक्षात्कार कराते हुए उनको ऐसा तैयार किया कि उनके उसके बाद उन्होंने उनके ही रथ के द्वारा उनके ही तन में प्रवेश करके ये ईश्वरीय ज्ञान देना शुरू किया, राज्यों की शिक्षा भी मिली। तो परमात्मा के बारे में कौन है, कैसे आते हैं, आते जरूर है, हम मानते हैं, तभी हम शिवरात्रि मना रहे हैं, क्योंकि रात्रि के समय पर शिव परमात्मा का अवतरण, तो रात 24 घंटे की नहीं परंतु इस सारे विश्व में जब अज्ञान का अंधकार होता है, दुख शांति मनुष्य विकारों में पूरी तरह से फंसे हुए होते हैं, तो ऐसे समय पर जो मुक्तेश्वर हैं, पापकटेश्वर हैं, कालेश्वर हैं, उनको आप 1000 नाम भी दे सकते हैं जिसमें शिव की प्रतिमाएं सारे भारत में भिन्न भिन्न स्थानों पर पूजी जाती हैं। तो परमात्मा निराकार ज्योति बिंदु है और 5 तत्वों से पार जो निराकारी दुनिया है, हम सब आत्माओं का घर है। तो संगम युग के समय पर उनको इस तन में प्रवेश करके जो उन्होंने प्रवेश किया और ये ईश्वरी ज्ञान और राज्यों की शिक्षा देनी होती है, तो परमात्मा ये ज्ञान ईश्वरी शिक्षा हमें दे रहे हैं। तो इंतजार तो सभी को रहती है और आपके जीवन में भी जरूरी जिज्ञासा होगी कि हम परमात्मा से मिले। तो मैंने ये सोचा कि मुझे उनसे मिलना चाहिए, परमात्मा से भी मैं मिलना चाहती हूँ, शिव परमात्मा से भी मिलना चाहती हूँ, परंतु साथ में वो जिस तन में आते हैं, जिस शरीर में प्रवेश किया है, मैं उनसे भी मिलना चाहती हूँ। मेरा ये सौभाग्य था कि प्रजापिता ब्रह्मा, जिनको ये संन्यास के बाद नाम दिया गया, उनका दिल्ली में आना हुआ और उस समय पर मैं अभी स्कूल में ही पढ़ती थी। तो मैंने समय निश्चित करके जब उनसे मिलने गई तो जैसे मैंने देखा कि जब मैं उनको देख रही हूँ तो बेशक उनका अपने पवित्रता, अपनी अलौकिक जीवन, अपनी साधना का एक प्रकाश तो था ही, वो तो दूर से ही वो भव्य दिव्य मूर्ति दिखाई दे रही थी, परंतु एकदम से ऐसा लगता था कि जैसे अंदर से उनके एक उनके प्रकाश के साथ साथ कोई ज्यादा ब्राइटर, ज्यादा ज्योतिमय, जैसे ज्यादा प्रकाश है। तो फिर मैं जैसे कि जो मिलन होता है वो नेत्रों के द्वारा होता है, तो मैं उनके भ्रुकुटी में और उनके नेत्रों की तरफ देखती रही और मुझे कुछ क्षण के लिए सबसे पहले तो ऐसा लगा कि मुझे अपना शरीर भूल गया बिल्कुल ही, और मेरे सामने जैसे कि एकदम ऐसे तेजोमय और ज्योति स्वरूप परमात्मा, जो पिता, शिक्षक और सद्गुरु हैं, जैसे मैं उनसे नैन मुलाकात कर रही हूँ, जैसे वो मेरे को प्रजापिता ब्रह्मा के नेत्रों के द्वारा मुझे ये दृष्टि दे रहे हैं। तो कुछ क्षणों के लिए ऐसा अनुभव हुआ और उसके बाद तो आप सोचिए कि और जिज्ञासा बढ़ती है। तो कई बार उस मेरा माउंट आबू में, जहां पर हमारा हेडक्वार्टर्स है और प्रजापिता ब्रह्मा शिव बाबा उनके तन में आते थे, वो निवास स्थान भी है, तो मैंने काफी आना शुरू किया। और कई ऐसा समझते हैं, किसी ने कहा 75 साल हो गए परमात्मा यहाँ पर आए हुए हैं, तो कोई फर्क तो नहीं दिखाई पड़ता है क्योंकि संसार की समस्याएं तो बढ़ ही रही हैं। लेकिन आप देखिए कि जब अंधकार से रोशनी, जैसे रात के बाद जब प्रातः शुरू होता है तो अंधेरा तो होता ही है, वृक्ष बड़ा होता है, जर्जरीभूत की अवस्था बहुत खराब हो चुका है, डिक्के हो चुका है, तो उससे छोटी सी कलम निकाली जाती है। तो परमात्मा क्योंकि पतित पावन है और पतित आत्माएं जिनमें विकार है उनको निर्विकारी और पवित्र बनाना है, तो जो ये कार्य चलता है वो गुप्त चलता है। और लेकिन अनुभव व्यक्तिगत रूप से, शिक्षाओं के रूप से, और उसके साथ साथ फिर जब संबंध बढ़ता है, तो इस समय मैं तो यही आप लोगों को संदेश दूंगी कि इस बार जो आप शिवरात्रि मनाएं उसको शिव जयंती के रूप से मनाएं, अर्थात इस बात को समझें और समझ करके जितने तक हो सके, जो भी आप संपर्क कर सको, जरूर ये अनुभव करें कि किस तरह से वर्तमान समय परमपिता परमात्मा निराकार शिव वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन से ईश्वरी ज्ञान और राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो इस समय पर अपने संपूर्ण स्थिति में है, फरिश्ता स्वरूप में है, लेकिन इस समय भी परमात्मा एक दूसरे माध्यम के द्वारा हम सब बच्चों से मिलने के लिए आते हैं। तो मैं ये नहीं चाहती सिर्फ कि आप तो ये जानकारी हो, पर मेरी ये भी इच्छा है कि जब ये शिव जयंती के रूप से हम मना रहे हैं तो क्यों ना आप भी एक ईश्वरीय अलौकिक जीवन को प्राप्त करें और परमात्मा के मिलन का और परमात्मा के जो ईश्वरी कार्य है उसका आप पूरी तरह से साक्षात्कार करें। इस शुभ अवसर पर, इतने पवित्र पावन त्योहार पर, मैं आप सभी को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं तो देती हूँ, परंतु साथ में इतना जरूर कहूंगी कि आप थोड़ा सा इस बात के ऊपर विचार करेंगे कि जब परमात्मा इस समय सृष्टि पर अपना कार्य कर रहे हैं, जबकि परमात्मा इस सृष्टि पर आके हमें शिक्षा दे रहे हैं और हम सभी के गाइड बन के हमको मुक्ति जीवन मुक्ति ले जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी एक अपना ईश्वरीय अलौकिक लू और इस प्रकार का अनुभव अपने जीवन में करूं।
आज हिमालय की चोटी से खुलकर ये ऐलान करो, जागो ऐ जग वालों, भारत में आया भगवान कहो।
आज हिमालय की चोटी से खुलकर ये ऐलान करो, जागो ऐ जग वालों, भारत में आया भगवान कहो।
भाग्य बनाने घड़िया है, भाग्य बनाने की घड़िया, कहीं बीत न जाए सोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा ठहर रहा है।
तो अभी जो हमें पता चल रहा है कि हम सब महसूस कर रहे हैं कि एक थर्ड एंटिटी कुछ चाहिए जो अब हमसे नहीं हो रहा, यू नो, वो तो वो क्यों है, क्या क्यों जरूरत पड़ रही है आज हमें?
अगेन, जब एक पूरा सिस्टम जो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में चल रहा था, यू नो, जो हम लॉ ऑफ साइंस में भी लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं कि एक सिस्टम एक बहुत ऑर्डर्ड फॉर्म में चल रहा है, जब तक वो चल रहा है इट्स मूविंग, एंड देन सडनली यू सी दैट सिस्टम कोलैप्सिंग, एंड कोलैप्सिंग इन एवरी स्फीयर, नॉट एक तरफ नहीं, चाहे वो पोलिटिकल स्ट्रक्चर है, साइंटिफिक स्ट्रक्चर है, एनवायरमेंटल स्ट्रक्चर है, पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप्स हैं, सब जगह आपको एक कोलैप्स दिखाई देने लगता है। एंड देन मैनकाइंड इज ट्राइंग हर तरह से कि कैसे इस स्ट्रक्चर को फिर से हम ठीक करें। हम आज कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑन बिग लेवल्स, लेकिन इट जस्ट सीम्स टू बी गोइंग, एंड देन इट सेज के कोई एक शक्ति चाहिए जो इस सबको अब ठीक करे। लेकिन अभी भी हमें क्लैरिटी नहीं है कि वो जो एक शक्ति है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, वो अगर आई भी है या आती भी है तो वो आकर करेगी क्या, क्योंकि इसीलिए हम उसको पहचान नहीं पाएंगे। अभी भी हम ये ढूंढ रहे हैं कि वो अगर आया है तो दुनिया ठीक हो जाए, लेट द वर्ल्ड चेंज, जैसे भाई साहब ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग, तो वो जो डेंजर जो हमारे सामने खड़ा है वो डेंजर खत्म हो जाए, ठीक हो जाए, एवरीथिंग शुड बिकम ओके। दैट्स नॉट गोइंग टू बी गॉड्स रोल, वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। क्योंकि आज दिन तक एक और जो बहुत डीप बिलीफ सिस्टम था जिससे हम चलते आए, वो ये था कि ये सृष्टि ही भगवान की मर्जी से चल रही है। यू नो, कई बार हम भाई बहनों को कहते हैं कि आप सेंटर पर आए, मेडिटेशन सीखें, कहते हैं भगवान की मर्जी होगी तो हम आ जाएंगे। हाँ। अच्छा, कहीं आपने तीर्थ पर जाना है, आपका जाना कैंसिल हो गया, कहते भगवान की मर्जी नहीं थी या उस देवी का बुलावा नहीं था। तो हमने कन्वीनियंटली अपने कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर डाल दी, क्योंकि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम वी हैव बीन लिविंग विद दिस बिलीफ सिस्टम कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेवार कोई ना कोई है। यू नो, अवेकनिंग के प्लेटफॉर्म पे भी हमने बार बार देखा है कि वट एवर आई फील आई ऑलवेज पुट द ब्लेम ऑन समवन, कि समवन एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट्स हैपनिंग विद मी। एंड जब मुझे कोई नहीं दिखा कि किसको मैं पॉइंट करूं, आई पॉइंटेड इट अप देयर कि भगवान की मर्जी से सब कुछ चलता है। ट्रू और फॉल्स वी हैव टू आस्क आवर सेल्फ, एंड लेट्स जस्ट सिट बैक एंड आस्क आवर सेल्फ कि अगर भगवान की मर्जी से ये सृष्टि चल रही होती तो ये सृष्टि कैसी होती। भगवान हमारा भाग्य लिख रहा होता, हरेक का भाग्य लिख रहा होता, तो हम सबका भाग्य कैसा होता, हम सबकी जीवन कैसी होती। दिस आई नीड टू आस्क माई सेल्फ बिफोर आई पुट द ब्लेम और द रिस्पॉन्सिबिलिटी अप देयर।
नो, वट यू ट्राइंग टू से इसकी उसकी मर्जी से ये सृष्टि नहीं चल रही है।
वी नॉट ट्राइंग टू से एनीथिंग, वी नीड टू चेक एंड आस्क आवरसेल्फ, क्योंकि बहुत चीजें हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, एंड समवेयर हमने उस पर कभी कुछ चर्निंग नहीं की, मंथन नहीं की, हमने जो सुना जो समझा उसको बस स्वीकार किया, फिर हमें अगले दिन कुछ और सुना उसको भी हमने मान लिया, एंड इसीलिए इतने सारे कन्फ्यूजन्स हैं, एंड इसीलिए है कि वो भगवान है भी या नहीं है। अगर क्लैरिटी से होता तो वी वुडन्ट बी सो कन्फ्यूज्ड। तो भगवान की मर्जी से ये सृष्टि चल रही है, आई जस्ट नीड टू स्टॉप एंड आस्क माई सेल्फ कि इफ फॉरगेट भगवान की मर्जी से, अगर आपकी मर्जी से भी आज ये सृष्टि चल रही होती, हाउ वुड यू वॉन्ट द वर्ल्ड टू बी?
कितनी बार हमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप प्राइम मिनिस्टर बने,
आप प्राइम मिनिस्टर बनते, वेरी गुड, तो ये देश कैसा होता? तो तुरंत आप क्या करते हैं, आप एक परफेक्ट देश क्रिएट कर देते हैं, तो आप भी एक परफेक्ट सृष्टि क्रिएट करते, यू वुडंट क्रिएट अ वर्ल्ड वेयर सो मच सीम्स टू बी कोलैप्सिंग लाइक दैट.
किसकी मर्जी से ये दुनिया चल रही है?
दैट वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ ना. लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि वो परमात्मा है, वो सर्वशक्तिवान है और उसकी मर्जी से सृष्टि चल रही है, हाउ वुड द वर्ल्ड बी? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. एंड इसीलिए हम सेकंड में फिर बाद में ये कहते हैं कि हे भगवान, तेरी सृष्टि को देख क्या हुआ है. सी, अगर मैं कहूं सो एंड सो व्यक्ति इज अ वेरी गुड लीडर और ये उसकी कंपनी है, ये वो चेयरमैन है, तो अगर चेयरमैन बहुत अच्छा है तो कंपनी कैसी होनी चाहिए? और अगर कंपनी पूरी कोलैप्स कर रही है तो या तो चेयरमैन ठीक नहीं या फिर चेयरमैन उस कंपनी का ध्यान रख नहीं रहा. सो परमात्मा की मर्जी से सृष्टि चलती, परमात्मा हमारा भाग्य लिखता, मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है अगर परमात्मा डिसाइड कर रहा होता तो हम सबका जीवन कैसा होता? वी वुडन्ट बी टॉकिंग अबाउट स्ट्रेस एंड फियर एंड इनसिक्योरिटी एंड करप्शन एंड अनटाइमली डेथ. आज कितना वेरी वेरी कॉमन थिंग दैट हैज हैपेंड इज यंग बच्चा 20 साल का, 25 साल का, वन ईयर मैरिड, छोटा उसका बच्चा है, एक्सीडेंट, डेथ हो गई. भगवान की मर्जी से ये हो रहा है? इजंट ही बीइंग वेरी अनफेयर देन?
बट वो बड़ा डिटैच्ड होके, बड़ा कोल्ड होके उसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं.
परमात्मा की महिमा के लिए हमने आज दिन तक क्या गाया?
कि पतित पावन, प्रेम का
सागर, क्षमा का सागर, कल्याणकारी, हमारे दुख हर के सुख देने वाला. ये तो हमें दुख ही दे रहा लगता है रोज. सो मच, देर इज सो मच पेन एंड सोरो. इफ देर इज सो मच पेन एंड सोरो और ये उसकी मर्जी से है, तो हम उसको दुख हरता, सुख करता कैसे कह सकते हैं? हम उसको कल्याणकारी कैसे कह सकते हैं? एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, हम उसको अपना पिता कैसे कह सकते हैं? पिता तो ऐसा भाग्य नहीं लिखेगा किसी बच्चे के लिए. आज आपके बच्चे ने कितनी भी बड़ी गलती की हो, आप डिटैच होकर उसका भाग्य ऐसा तो नहीं लिखेंगे. वो कैसा भाग्य लिखता है? सो वी नीड टू आस्क आवरसेल्व्स. तो परमात्मा हमें आकर यही समझाते कि ये सृष्टि परमात्मा की मर्जी से नहीं चलती है. परमात्मा का रोल इज वेरी डिफरेंट. इस मेरे जीवन में सब कुछ जो हो रहा है वो मैं खुद अपनी मर्जी से करती हूँ.
मतलब क्या मेरा भाग्य जो है, माई डेस्टिनी is
we have to ask ourselves. No, ask yourself. You get up in the morning, you go to work, you choose what work to do, you choose what to, you aren't you doing it out of your own free will or someone is forcing you to do what you have
my
to?
Circumstances, you know, my life whole
to
thing.
So circumstances bhi kisne create kiye hain?
Puri srishti jaise create hui hai.
Wo kisne create kiya? Har pehle hum apni srishti ko dekh lete hain. And my srishti would be my world here and my little family or my little office. Let me just look at that much. Let me forget the big world. ये छोटे से world में सारा दिन जो हो रहा है ये किसकी मर्जी से हो रहा है? ये हमारी मर्जी से हो रहा है. ये हमारे कर्म है और हमारे कर्म हम करते हैं और वो कर्म का फल हमारे सामने आता है. इस जब फल सामने आता है उसमें परमात्मा इंटरवीन नहीं कर सकता है बीच में. और अभी भी ग्लोबल लेवल पे जो सारे हमारे कर्मों के रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं, परमात्मा उस रिजल्ट को चेंज नहीं कर सकता है. हिज रोल इज वेरी डिफरेंट.
शिवानी, अब जैसा आपने कहा कि वो मेरी, मतलब वो उसके मर्जी से हमारी, मेरी जिंदगी नहीं चल रही, लेकिन फिर जो आपने कहा कि मैं जो कर्म कर रही हूं, कई बार तो मैं कर्म कॉन्शियसली भी नहीं कर रही होती. कई बार मेरे सर्कमस्टांसेस मुझे फोर्स कर रहे होते एंड आई डोंट डू इट लाइक कि ऐसे मेरी डेस्टिनी मैं क्रिएट करने वाला हूं या करने वाली हूं.
दैट इज लीडिंग अ लाइफ विदाउट बींग अवेयर. हम अवेयरनेस से नहीं अपने जीवन चल रहे ना. आप देखो अवेकनिंग के प्लेटफॉर्म पे हम हर रोज यही डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी जो मन की स्थिति है, फिर जो थॉट्स चलते हैं, फिर जो हम डिसीशन लेते हैं, जो हम कर्म करते हैं, ये हम कर रहे हैं. अवेयरनेस से करेंगे तो कॉन्शियसली चूज करके करेंगे, और अनअवेयर करेंगे तो किसी न किसी पर उसका ब्लेम कर देंगे. आज अगर मुझे झूठ भी बोलना पड़े, लेट्स से आई एम वर्किंग फॉर यू एंड आप गुस्सा कर देते हैं अगर मैं छुट्टी लेती हूं, तो मैं झूठ बोलती हूं, लेकिन अवेयर हूं तो आई विल से मैंने झूठ बोला या आई चूज टू टेल अ लाई. लेकिन अनअवेयर हूं तो कहेंगे वो गुस्सा करते हैं तो झूठ बोलना ही पड़ता है, इट्स नॉट माय चॉइस. लेकिन अवेयर होकर करूं या अनअवेयर होकर करूं, कर्म तो फिर भी मैंने ही किया है और उसका रिजल्ट तो मेरे सामने आना ही है. आज हम अपने लेवल पर देखें या वर्ल्ड के लेवल पर देखें, जो भी सिचुएशंस आ रही हैं ये हमारे ही कर्मों का रिजल्ट है. हमने अनअवेयरनेस से किया और इसलिए आज हम कह रहे हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
कर्म करने को हमें प्रेरित कौन करता है? हम कई बार कहते हैं कि प्रेरणा तो ऊपर से आई।
आज सुबह आपको यहाँ आने की प्रेरणा किसने दी? यू चूज टू गेट अप एंड कम हियर। इट्स माय माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्किंग द होल डे। कोई प्रेरणा नहीं दे रहा औरत था, क्योंकि अगर वो प्रेरणा दे रहा होता तो वो सबको कैसी प्रेरणा देता? अगर लेट्स से आप और आपका बच्चा सेम ना, पेरेंट एंड चाइल्ड, आप अपने बच्चे को राइट कर्म की नॉलेज दे सकते हो। सपोज बच्चे ने कल स्कूल जाना है, आज आप उसको नॉलेज दे सकते हो कि होमवर्क कर लो, तो आप राइट कर्म की नॉलेज दे सकते हो। अगर वो होमवर्क करने बैठा है, आप उसको हेल्प भी कर सकते हो, तो राइट कर्म करने की ताकत भी दे सकते हो। लेकिन फाइनली कर्म की चॉइस
उसके
बच्चे की होती है। और अगर बच्चे ने चूज किया कि उसको होमवर्क नहीं करना है, तो अगले दिन मॉर्निंग स्कूल जाकर जो उसका रेपरकशन आने वाला है, जो टीचर ने पनिश करना है, वो पनिशमेंट बच्चे को ही फेस करनी होगी। या अगर रिवॉर्ड मिलना है तो वो भी बच्चे को ही मिलना होगा। आप बीच में नहीं जा सकते। योर रोल एंड्स द डे बिफोर। राइट कर्म करने की नॉलेज एंड राइट कर्म करने की ताकत, ये दो चीजें परमात्मा हमें दे सकता है। उसके बाद कर्म करने की चॉइस वो हमारी अपनी है, और जो कर्म हम करेंगे उसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा। उस समय हम उसको कहें कि हे परमात्मा मेरी ये प्रॉब्लम ठीक कर दो, विल नॉट हैपन।
पर कई बार मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा होता है जो मैंने कभी क्रिएट नहीं किया। मेरे साथ सर्कमस्टांसेस रहते हैं, सिचुएशंस ऐसी आती हैं, मेरी जॉब मतलब कोई बड़ी से बड़ी, या किसी का साथ छूट जाता है, डेथ हो जाती है लाइफ में, सो मेनी थिंग्स, सो मेनी सर्कमस्टांसेस, या फिर एक प्राकृतिक आपदा आती है, यू नो अर्थक्वेक। मैंने तो नहीं कुछ क्रिएट किया था कि मेरे जीवन में अर्थक्वेक आ गई, या एक किसी का कोई अटैक हो गया, तो तब मैं कह रहा होता हूं या तब मैं कह रही होती हूं कि मुझे प्रोटेक्ट करो, या मेरी जिंदगी में ये प्रॉब्लम आई है उन्हें सॉल्व करो। हु इज रिस्पॉन्सिबल देन?
ऐसा है बहन जी कि दो लेवल पे इस बात को सोचना है। एक है मेरी इंडिविजुअल लेवल पे, एक है कलेक्टिव लेवल पे। तो इंडिविजुअल लेवल पे आप देखेंगे कि कई ऐसी चीजें लाइफ में आती हैं, हम समझते हैं मैंने क्रिएट नहीं की, लेकिन मैं उस समय अपनी किसी पर्टिकुलर लाइफ स्पैन को देख रहा होता हूं कि बचपन से लेकर अब तक तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन आत्मा के तौर पे मेरे कई बर्थ हो चुके हैं और उसके भी जो कुछ अनसेटल्ड अकाउंट हैं वो मुझे इस जन्म में सेटल करने पड़ते हैं। तो जो तो इस जन्म के हैं वो तो दिखाई देते हैं, मैंने नहीं पढ़ा तो मेरी ये हालत है, मैंने पढ़ा तो ये हालत है, लेकिन उसके पीछे जो अनसेटल्ड अकाउंट है उनका भी बहुत प्रभाव होता है। और क्योंकि हम धीरे धीरे हम नीचे आते गए हैं, अब कलयुग में आ गए हैं, तो हमारा वो डेट अकाउंट काफी ज्यादा है। तो सडनली जब अपीयर होता है तो हमें ऐसा लगता है, यह है इंडिविजुअल लेवल पर। कलेक्टिवली अब अर्थक्वेक तो एक व्यक्ति के लिए नहीं आता ना, वो तो एक एरिया में आ जाता है, कभी कभी पूरा शहर तबाह हो जाता है। उसमें हम और भी हैरान होते हैं कि ये अर्थक्वेक में तो मेरे सारे इधर उधर के भी डिस्टर्ब हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, तो ये किसने ले आया, मेरे कर्म ने लाया क्या? तो इसके लिए फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि कलेक्टिवली भी ह्यूमैनिटी, इंसान जो है जिस तरह के कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। आपको खास तौर पर यह देखना होगा इस सारे प्रकृति में, सारे यूनिवर्स में, बहन जी ने आपको बताया कि परमात्मा कहते हैं कि मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करता हूं, क्योंकि किसी भी चीज का कोई जितना परफेक्ट क्रिएटर होता है उसको ऑटोमेटिक बनाता है, उसमें किसी खास खास पॉइंट पर इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। अब देखिए कि जितनी चीजें फंक्शन कर रही हैं उसमें कौन है जो वेरिएबल रोल है, जिसका नेचर है। अब आप 300 साल आज से का बता सकते हैं सूर्य कब सेट होगा और कब राइज होगा, इतना परफेक्ट है नेचर, अपना परफेक्शन में काम करती है। और दूसरा कौन सा फैक्टर इसमें होता है, एनिमेशन है, वेजिटेशन है, इसके भी सेट लॉज है, वो वेरिएबल नहीं होंगे, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एवरीथिंग फंक्शंस अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्टेबल थिंग। अगर शहद की मक्खियां अपना वी हाइव बनाएंगी तो एक ही डिजाइन का बनाएंगी, यू कैन नो। कौन सा ऐसा वेरिएबल फैक्टर, वो ह्यूमन बीइंग है, हम और आप हैं। तो हम लोग दुनिया में वेरिएशन कर सकते हैं, और जब इतनी कर सकते कि गॉड ने तो इंटरफेयर करना ही नहीं, अगर इंटरफेयर करता तो हमें करने की हिम्मत ही नहीं होती, कर ही नहीं पाते। जैसे हम कहते हैं ना परमात्मा ने कि कहने से पता नहीं हिलता, तो परमात्मा कल्याणकारी, शिव का मतलब ही होता है कल्याणकारी, तो कल्याणकारी डायरेक्शन देगा और पावरफुल है, सर्वशक्तिवान है, फिर ये भी नहीं कि डायरेक्शन उसकी पे हम ना चलें, वो तो करवा लेगा। लेकिन क्योंकि ऐसा हो रहा है प्रैक्टिकली हम देखते हैं, हमें फ्रीडम है अच्छा भी करने की खराब भी करने की, तो जिस तरह की हमारी पीछे का संस्कार है हम उस तरह करते हैं। जब अच्छा संस्कार है अच्छा ही अच्छा करते हैं तो ये दुनिया स्वर्ग भी होती सतयुग भी होती है। लेकिन आज की स्थिति में क्योंकि पुराने हो चुके हैं और हमारे पूर्व संस्कारों का कुछ डेट अकाउंट है, तो कलेक्टिवली भी हमारे उसको हम कहते हैं एक तो मेरी लाइफ, लेकिन किस युग में किस समय में किस परिस्थिति में आजकल हम सब ह्यूमन बीइंग जी रहे हैं, तो उनकी कलेक्टिव क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो आज रिफ्लेक्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल क्लैमिटीज।
शिवानी, अभी जो हम बात समझ रहे हैं कि जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो मेरे इंडिविजुअल, जैसा कि कहा भाई साहब ने, इंडिविजुअल कर्म के कारण है या फिर कलेक्टिव है, अगर ये सब है यही, तो परमात्मा का रोल क्या है? मतलब मैं आज तक यही सोच रहा था कि वो बदलेगा मेरे जीवन की चीजें, यू नो, जो कुछ हुआ है वो सब कुछ बदल सकता है अगर उसकी मुझ पर कृपा हो जाती है। सो देन व्हाट इज हिज रोल?
बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने पनिशमेंट देनी है। अगर पेरेंट बीच में आके टीचर को बोले डोंट पनिश माय चाइल्ड, द टीचर विल से अभी यू आर आउट, नाउ इट्स बिटवीन मी एंड द चाइल्ड। तो पेरेंट पनिशमेंट को नहीं रोक सकता है, लेकिन जब बच्चे को वो पनिशमेंट मिल रही है, पेरेंट उस बच्चे को उस पनिशमेंट को फेस करने की ताकत दे सकता है। हमारे सामने जो सिचुएशंस आ रहे हैं, परमात्मा उस सिचुएशन को नहीं चेंज कर सकता। एंड इट्स नॉट कि नहीं चेंज कर सकता बिकॉज ही इज पावरलेस, उसके अंदर ताकत नहीं है करने की। द लॉ इज दैट ही शुड नॉट चेंज इट, क्योंकि हर चीज जो हो रही है, लेट्स से सपोज आई चीटेड यू, सपोज जैसे भाई साहब ने बताया, आत्मा अपनी जर्नी पे है, बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स में है। आज आप इस कॉस्ट्यूम में हैं, मैं इस कॉस्ट्यूम में हूं, एंड वी डू बिजनेस टुगेदर, लेट्स से, एंड आई चीट यू, मैंने आपका बहुत नुकसान किया, लाखों का किया, आप उसकी वजह से कष्ट में गए, आपका परिवार दुखी हुआ, आपके बच्चों की पढ़ाई रुक गई, बहुत कुछ हो गया आपके जीवन में, 20-50-100 साल बीत गए, आत्मा आप वही है, मैं भी आत्मा वही हूं, कॉस्ट्यूम चेंज हो गया, अब आपका कॉस्ट्यूम चेंज, मेरा कॉस्ट्यूम चेंज। हम दो सोल्स जब फिर कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो हिसाब किताब जो बताया वो अभी पेंडिंग है, तो फिर आप मेरे सामने आएंगे मुझे वो रिटर्न देने के लिए। इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल, इमोशनल चीटिंग, यू नो, व्हाटएवर। अब जब आप वो मेरे सामने आएंगे, अगर मैं परमात्मा को कहूं कि मेरे ये प्रॉब्लम को ठीक कर दो, मतलब ये जो मेरे सामने आ रहा है इसको चेंज कर दो, ही शुड नॉट डू इट, बिकॉज ये किया मैंने था, हम दोनों उसके बच्चे हैं। अगर वो इस टाइम बीच में इंटरवीन करके मेरी सिचुएशन को चेंज कर दे, ही इज बीइंग अनफेयर टू यू।
मतलब अगर सपोज मेरे दो बच्चे हों,
हाँ,
और exactly. आपस में झगड़ा हो रहा है तो हम लेकिन एक बात,
बच्चों को क्या कहेंगे, हाँ, आपस में सेटल करो। तो ये परमात्मा इंटरवीन अगर कर दे, देन ही इज नॉट बीइंग फेयर टू यू। फिर मैं उसको एप्लीकेशन डालू कि ये प्रॉब्लम ठीक कर दो, और आप उसको एप्लीकेशन डालो कि नहीं, मेरे साथ जो अनफेयर हुआ है वो तो मुझे जस्टिफिकेशन चाहिए। ही इज द फादर ऑफ बोथ ऑफ अस, इसीलिए वो इसमें इंटरवीन नहीं करता है। हाँ, लेकिन अब रोल क्या है उसका, कि मेरे सामने ये सिचुएशन आई है, वो मेरा फादर है, मैं उस परमात्मा से कनेक्शन जोड़, आत्मा अपने अंदर इतनी ताकत भर लेती है, शक्ति भर लेती है कि उस परिस्थिति को फेस कर सकती है आराम से, और बहुत प्यार से उसको सेटल कर सकती है विदाउट क्रिएटिंग एनी मोर रॉन्ग कर्मा। लेट्स से मैंने आपको चीट किया था, अब आप मेरे सामने वापस आए, अब फिर आप कुछ मेरे साथ गलत कर रहे हैं, लेकिन अब मैं अगर उसके साथ कनेक्शन जोड़ लूं तो इस सिचुएशन में पहले मैं अपने आप को स्टेबल रख पाती हूं, वो बात मुझे बहुत बड़ी लगती नहीं है, तो मुझे बहुत भोगना नहीं होती, एंड अब मैं आपके साथ फिर कुछ गलत नहीं करूंगी। तो हिज पावर हेल्प्स मी टू सेटल द पास्ट अकाउंट विच हैज कम विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट्स मी फ्रॉम डूइंग एनी मोर रॉन्ग कर्म।
तो जिसने दोबारा किया, जिसके साथ पहले हुआ था, उसका क्या हुआ?
हरेक जो बच्चा उसके साथ अब कनेक्शन जुड़ेगा। सिचुएशंस आज हम सबके सामने आ रही है, कोई ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जिसके सामने आज सिचुएशंस नहीं आ रही है। किसी के सामने थोड़ी छोटी, किसी के सामने बहुत बड़ी परिस्थिति हरेक के सामने है। आज कोई आत्मा नहीं कह सकती कि वो 24 आवर्स सदा खुश, सुखी एंड यू नो संतुष्ट है, हलचल में है। दिस इज आवर सफरिंग, और ये सफरिंग को हमने कहा सिचुएशंस की वजह से है। परमात्मा सिचुएशंस को नहीं चेंज करेगा, लेकिन परमात्मा से कनेक्शन जोड़कर आज हम अपने अंदर वो ताकत भरते हैं जिससे हमारी सफरिंग कम होती है। सफरिंग कम होने से फिर हम उस सिचुएशन को जिस तरह से हैंडल करते हैं, सिचुएशन चेंज हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई द ब्रह्मा कुमारीज वी लर्न, व्हेन वी चेंज द वर्ल्ड विल चेंज। वी नॉट टू वेट फॉर द वर्ल्ड टू चेंज, वर्ल्ड विल नॉट चेंज लाइक दैट।
महाराष्ट्र के नासिक जनपद में गौतमी नदी पर देव्य त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग अपना अनोखा रूप धारण किए हुए है। इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर त्रयंबकेश्वर का प्राचीन मंदिर विद्यमान है। त्रयंबकेश्वर के संबंध में प्रचलित रोमांचकारी कथा का आध्यात्मिक रहस्य भी कम रोमांचक नहीं है। त्रयंबकेश्वर का अर्थ है ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करने वाले ईश्वर। वास्तव में साधारण नेत्रों से जो बातें देखी व समझी नहीं जा सकती हैं, उसे दिव्य नेत्र से ही देखा व समझा जा सकता है। यही शिव का तीसरा नेत्र है, जिसके खुलने मात्र से ही काम क्रोध जैसे महाशत्रु भी नष्ट हो जाते हैं। महाराष्ट्र प्रदेश में ही औरंगाबाद के पास स्थित विश्व प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के निकट ज्योतिर्लिंगम शिव को घृष्णेश्वर के नाम से जाना जाता है। प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार पार्वती ने कुमकुम, केसर और शिवालय का जल लेकर जब हाथ पर घर्षण किया तो उससे शिवलिंग का निर्माण हुआ और दिव्य ज्योति प्रकट हुई, इसलिए यह तीर्थ स्थल घृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वास्तव में ये घर्षण ईश्वरीय ज्ञान के चिंतन एवं निरंतर प्रभु स्मरण के अभ्यास का प्रतीक है। ऐसे ही अभ्यास करते करते बुद्धिहीन भी बुद्धिमान बन जाता है। घृष्णेश्वर के निकट ही एक और ज्योतिर्लिंगम है, परली वैद्यनाथ। द्वादश ज्योतिर्लिंगम में भगवान वैद्यनाथ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ज्योति स्वरूप परमात्मा वैद्यों के भी वैद्य, परम वैद्य, परम चिकित्सक है। व्यक्ति का रोग जब असाध्य हो जाता है तो वह प्रभु स्मरण की शरण में आता है। जब संसार के सारे वैद्य सफल नहीं हो पाते हैं तो परम वैद्य परमात्मा स्वयं अवतरित हो सभी का रोग कष्ट मिटा देते हैं। इसीलिए परमात्मा को अमृतेश्वर और नीलकंठ भी कहते हैं। नीलकंठ इसलिए क्योंकि संसार के विषय सागर से विष स्वयं ग्रहण कर भगवान भक्तों को विष से मुक्त कर देते हैं। परली वैद्यनाथ से कुछ ही दूरी पर स्थित है एक और ज्योतिर्लिंगम भीमा शंकर। पूना के पास स्थित यह ज्योतिर्लिंग सर्वशक्तिवान की शक्तियों का प्रतीक है। कहा जाता है त्रिपुरासुर एक अहंकारी राक्षस था जिसको भगवान ने अपनी शक्तियों द्वारा हराया। इसका भावार्थ है कि मनुष्यात्माएं जब अहंकार के वशीभूत हो, माया से परास्त हो जाती है, तब सर्वशक्तिमान ज्योतिर्मय परमात्मा अवतरित हो जगत को अंतर मन की आसुरी शक्तियों पर विजय प्रदान कराते हैं। आइए अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर। आंध्र प्रदेश स्थित श्री शैलम में मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग है। कई तलों का बना हुआ ये ऊंचा शिव मंदिर जीवन को उच्चता प्रदान करता हुआ प्रतीत होता है। मल्लिक का एक अर्थ है बेला सदृश एक अति सुगंधित और श्वेत वर्ण का पुष्प। वास्तव में सच्चिदानंद भगवान आशुतोष को सत्यम शिवम सुंदरम भी कहा जाता है, क्योंकि सत्य रूप भगवान इस सृष्टि के बीज रूप मंगलकारी और अति सुंदर है। इसी सुंदरता और सत्यता के मेल से यह प्रसिद्ध शिव मंदिर जन जन की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। आंध्र प्रदेश से अब हम चलते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में रामेश्वरम नामक ज्योतिर्लिंगम है। कहा जाता है कि राम ने रावण पर विजय पाने के लिए समुद्र तट पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। बहुत से हिंदू पुरुषोत्तम श्री राम की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि श्री राम ने भी शिव की पूजा की। इससे मनुष्यों के साथ देवों का भी परमेश्वर शिव में अगाध स्नेह एवं अपूर्व भक्ति का संकेत मिलता है। निराकार ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा ही सर्व आत्माओं के परम पिता है। वही महेश्वर है, देवेश्वर तो परमेश्वर भी। इस यात्रा के मध्य हमने देखा कि 12 ज्योतिर्लिंगों के हर नाम में महत्वपूर्ण अर्थ छिपा हुआ है, जो कि शिव परमात्मा की पहचान उनके गुणों और उनके कर्तव्यों को प्रत्यक्ष करते हैं।
God is a point of light, a living energy. Like I am a living energy, I am a soul, and God is also a soul, but extremely pure and full of love and full of power. He is giving knowledge, he is giving understanding of creation. He is clarifying everything that was unclear in my search. And in the beginning it is sounds a little bit like philosophy, but when it's put into practice, when it becomes part of one's life, then I realized that it was God who was behind it, because it was working. It had a very, very deep effect on my life.
God is everything. He is my life today. And like I say, he is the only thing that's real. We come from Iceland, and we can see that after financial crisis, after earthquakes and volcano, people, they find there is no security out there. And they are realizing the only way is to go inward, to realize who they are themselves, and then upwards to God. And I can see how everyone, after they experience disasters in their lives, they look in, they look up, they look for God. God is the real, real, real friend.
Aaj Himalay ki choti se khul kar ye elaan karo, jaago ae jag walo, Bharat mein aaya Bhagwan ka ho.
भगवान
भाग्य बनाने बदल रहा अब देर न सतयुग होने शिव पिता का झंडा फहर रहा है.
इफ यू वर गॉड एंड यू वर टू नो ऑल the laws about what kind of thinking, talking, acting leads to unhappiness and happiness, and then seeing all the people on the world doing the wrong things, I think we would exactly do what God does. You would explain what to do to be happy and peaceful, and also we would encourage and give the power to be able to change, to bring these teachings into daily life.
He brings the knowledge, and the way that each person recognizes God and the knowledge is very unique and wonderful, which makes me think that it must be God. Only God could do this.
Well, he brings truth, he brings the means whereby the whole world can achieve what they are looking for, peace and happiness and all the things that people desire in their heart. Well, God is incorporeal, so he has to take the loan of a body, and it's my experience that he comes through Brahma, or Prajapita Brahma, as the father of humanity, to teach us Raja Yoga, because we have to learn how to transform ourselves.
Oh, lots of things. I mean, look at the world, how it is. He needs to heal, to cleanse, and especially to help people find themselves, find their spiritual identity, and start to have a feeling of their own self-worth, and certainly the worth of others, because God doesn't just teach me about myself, but he also teaches me how to respect others by aligning with eternal principles of action and interaction.
पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में
पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में
शिव पिता का झंडा फहर रहा है. आज हिमालय की चोटी से खुल कर ये ऐलान करो जागो ऐ जगवालों भारत में आया भगवान कहो.
आज हिमालय की चोटी से खुल कर ये ऐलान करो जागो ऐ जगवालों भारत में आया भगवान कहो.
भाग्य बनाने की घड़ियां बनाने की घड़ियां कहीं बीत न जाए सोने में भूमंडल सारा बदल रहा अब देर न सतयुग होने में शिव पिता का झंडा फहर रहा है.
आपने पढ़ा होगा और गीता के महावाक्य के अनुसार जब जब धर्म की ग्लानी होती है तब इस सृष्टि पर परमात्मा आती है. भक्त लोगों की रक्षा करती है और साधु पुरुषों का उद्धार करती है, इसलिए भक्त लोग इस प्रकार से गाते हैं. नयन हीन को राह दिखाओ प्रभु पग पग ठोकर खाऊं मैं. आखिर उनके दो नेत्र हैं, फिर भी तीसरा नेत्र मांगा करती है. वो तीसरा नेत्र होता है दिव्य नेत्र, ज्ञान का नेत्र. उसी के द्वारा परमात्मा विद्यालय के अंदर दो शिक्षाएं देते हैं, सहज ज्ञान और सहज योग. और वही इस बात को खोलते हैं कि मेरा असली स्वरूप ज्योतिर्बिंदु है. मैं कोई शारीरिक रूप वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं हूँ ज्योतिर्बिंदु. उस बिंदु की पूजा करने के लिए ज्योतिर्लिंगम शिवलिंग बनाया गया है.
ज्योति जगाओ, ज्योति जगाओ, विश्व शांति की ज्योति जगाओ,
ज्योति जगाओ.
निहायत ही खुशी की बात है कि प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय करीब मैं कॉलेज लाइफ में था तब से मैं इसके बारे में जान रहा हूं। पिछले 20 सालों से मैं कम से कम इसके बारे में जानता हूं। मेरे काफी दोस्त हैं जो आज इसमें अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि ये संस्था इतनी बेहतरीन काम कर रहा है कि पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का बहुत अथक प्रयास कर रहा है। और इंशाल्लाह जी मैं दुआ करता हूं कि यह संस्था हमेशा दीन दुनी रात चौगिनी तरक्की करे और सभी लोगों को एक सूत्र में बांधे रखे, सबको जोड़ के रखे कि सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य है, मकसद है इंसानियत, मानवता, एकता। कुरान पाक की पहली आयत शुरू होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से। इस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अरबी वर्ड है, इसका मतलब होता है कि तमाम तारीफें, तमाम खूबियां, तमाम जो भी खूबियां बयान की जाए उस रब्बिल आलमीन, उस ईश्वर अल्लाह गॉड भगवान के लिए है जो तमाम आलम की सृष्टि किया है, बनाया है, तमाम ब्रह्मांड को जो बनाया है। फिर उसके आगे सूरत में कहा गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, वो परम पिता परमात्मा अल्लाह ईश्वर गॉड जिसको हम अपने अपनी भाषाओं में, अपने अपने धर्म में जो भी बोलते हैं, वो कहा गया कि निहायत ही बहुत रहम करने वाला, कृपावान, दयालु, रहीम और करीम है। ये दूसरी आयत कुरान पाक की। तीसरी आयत में कहा गया है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम के बाद मालिक कयौमिद्दीन, माने वही तमाम ब्रह्मांड सृष्टि का मालिक है जो कयामत से लेकर इस दुनिया की सृष्टि जब शुरू हुआ तब से लेकर कयामत तक का मालिक और मुख्तार, सब कुछ वही है।